This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor, Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taazan ke saath. इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की और खबरों की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए जी हां हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध होंगे कुमार बिजॉय जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
धन्यवाद।
सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश।
थैंक यू हर्ष एंड कुमार, वेलकम टू द प्रोग्राम। A quick look at the headlines. Benchmark indices end lower. Sensex tanks over 900 points to slip below 73,000 mark amid broad-based sell-off. Small cap index plunges 5.1%. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone of three semiconductor projects. Says India is set to become global hub in semiconductor manufacturing. And Union Cabinet approves two corridors of Delhi Metro Phase 4 project.
शेयर बाजारों में आज भारी बिकवाली रही। सेंसेक्स 900 अंक से आज ज्यादा गिरा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 5% से अधिक की भारी गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन का वैश्विक हब बनेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1.25 लाख करोड़ रुपए की तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज की परियोजनाओं के तहत दो और कॉरिडोर को मंजूरी दी। सबसे पहले बात शेयर बाजारों की। बहुत दिनों से शेयर बाजार चढ़ रहे थे और ऐसा अनुमान जताया जा रहा था कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। आज थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, गिरावट रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 900 अंक से अधिक गिरा है, 72,762 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी लगभग 1.5% यानी 338 अंक की गिरावट देखी गई और ये 21,998 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स की जो 30 कंपनियां होती हैं, इन 30 कंपनियों में से 25 कंपनियों के शेयर आज गिरे हैं, जबकि मात्र 5 कंपनियों के शेयर ग्रीन में बंद हुए। थोड़े मजबूती के साथ, डिटेल्स के साथ गौरव।
बेंचमार्क इंडिसेस एंडेड ऑन अ वीक नोट टुडे विद द निफ्टी बिलो 22,000 due to widespread selling pressure amid a sharp fall in small-cap and mid-cap indices. The BSE Sensex crashed over 900 points to sink below the 73,000 level. The 30-share Sensex plunged 906 points, or 1.23%, to close at 72,762. The NSE Nifty tumbled 338 points, or 1.51%, to finish at 21,998. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 25 companies ended in the red, while those of 5 companies appreciated. Among the Sensex firms, Power Grid was the biggest loser, with over 7% loss, followed by NTPC, Tata Steel and Tata Motors. On the other hand, ITC, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Nestle, Bajaj Finance and HDFC Bank were the gainers. In the broader market at the BSE, the mid-cap index cracked 4.2%, while the small cap index plunged 5.1%. In sectoral indices at the BSE, the utility sector tumbled over 7%, the power sector index declined 6.35%, consumer durables sector also slipped 5.75%. Kumar, Harsh, you know, said, thodi correction. थोड़ा कितना थोड़ा है, ज्यादा कितना ज्यादा है, बिकॉज व्हेन वी लुक एट द मार्केट इट सीम्स लाइक इट्स स्लिप स्लाइडिंग अवे। वेयर डू यू थिंक इट्स हेडिंग?
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द लेवल वेयर द सेंसेक्स हैड बीन और निफ्टी हैड बीन। दीज आर ऑल टाइम हाई एंड जस्ट रिसेंटली यू नो देर वॉज ऑल टाइम हाई ऑन 15 जनवरी एंड विच दैट हाइट हैज ऑलरेडी ब्रोकन लास्ट वीक। दैट वॉज अ न्यू हाई। So when if I go with this point that how much is too much, then in that case up to 1% of a movement is considered to be only to a limited level, not beyond that. Okay, up to 1% level is fine, and it will be, market will be keep on moving to that extent. But today is little more as per se whatever we feel it, and it has got because of more on a domestic reason, lesser 1 or 2 points you can consider for the global reason. And domestic reason also, the kind of SEBI chief has said, madam has mentioned something related to mid-cap and small-cap organizations, and the way in some of the IPOs also. And the moment any regulator says we are watching, it means something, a message is there, and that message is the most important component.
The message well taken by the companies and particularly by the investors.
Yeah.
Lekin agar, waisi bhi agar aap Kumar dekhen, पिछले एक साल में जो परफॉर्मेंस रहा है स्मॉल कैप का और मिड कैप का वो जबरदस्त रहा है. जो लोग इधर जाते नहीं थे, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स, उन्होंने जमकर खरीदारी की है और इसकी वजह से भी उसके शेयर चढ़े हैं. लेकिन अगर सेक्टोरल बात करें, आज तो मैं देख पा रहा हूं रियल्टी, मीडिया, पीएसयू बैंक, टेलीकॉम, पावर, ऑयल एंड गैस, मेटल्स 5% से भी ज्यादा गिरे हैं. इन सेक्टर्स में क्या वजह है, क्या ये भी
जो आप इसमें अगर आप देखेंगे तो आप लास्ट जो पास्ट परफॉर्मेंसेस रहे हैं वो आप देखिए, किसी में भी 20-25% से कम का परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और वो परफॉर्मेंस अपने कंप्लीट हाइट पे जा चुका था. तो एक करेक्शन था, जितने पॉजिटिव क्लूज थे, जितने पॉजिटिव फैक्टर थे, सारे पॉजिटिव फैक्टर को ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका था. तो मार्केट तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक कि उसके पास एक कोई न्यू पॉजिटिव डोज नहीं मिलता है. और वो न्यू पॉजिटिव डोज तभी आएगा जब किसी सेक्टोरल में किसी भी तरीके का, ये तो या तो कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर उनको पॉजिटिव नोट्स पे, या कोई पॉलिसी मेकर्स अगर किसी तरह का कोई पॉजिटिव फील करवावे, तभी ये संभव है. अदरवाइज क्या है, मार्केट इस राइट पॉइंट पे है. इसको ऐसे मार्केट में कई बार परसीव किया जाता है, क्या ये कोई बबल तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर पूछा जाए तो एक डिवाइडेड ओपिनियन है. बट मैं बिलीव करता हूं कि अभी इसमें स्ट्रेंथ और बाकी है. ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन है, और इस तरह से अगर मार्केट अपने आप को करेक्ट करते हुए, स्टेबलाइज करते हुए, कंसोल करते हुए अगर मार्केट ऊपर मूव करता है तो मार्केट का स्ट्रेंथ सस्टेनेबल होता है.
वही कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जब खोते हैं तो रियली इज वेरी वेरी हर्टफुल फॉर मेनी इन्वेस्टर्स.
क्या हम कह सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस, इसको एक तरीके से आप ये मान सकते हैं. लेकिन मार्केट मंत्रा वो मंच है जिसके माध्यम से हम रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा जानकारी देने की कोशिश करते हैं, संयम बरतने के लिए उनको कहते हैं और जो सही चीज है वो बताते हैं. ऐसे में एक रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, जो कि मार्केट जब ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है तो घुसते हैं, और अचानक जब गिरता है तो उन्हें थोड़ा सा झटका लगता है, ऐसे में उनके लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे?
मार्केट में अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्टर बने, वो स्पेकुलेटर ना बने, मेरा तो पहला सलाह यही रहता है. और इन्वेस्टर के लिए ये जरूरी है कि होल्डिंग करें, इमीडिएट मार्केट के हर एक्शन पे रिस्पॉन्स ना करें. एंड तीसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है मार्केट में, अगर मार्केट गिर रहा है तो निकलने की जगह, अगर फंडामेंटल उसका सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैं बता रहा था अभी आपको कि इनके वैल्यूएशन के कुछ इश्यूज हैं कुछ खास सेगमेंट में, अदरवाइज फंडामेंटली दे आर ऑल स्ट्रांग, माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो उस कंडीशन में उनको थोड़ा पेशेंसली होल्ड करना चाहिए
कि और खरीद के एवरेज,
बल्कि अगर खरीद ले तो और अच्छा है. अगर वो डिपेंड करता है कि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है और फर्दर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है, लेकिन मार्केट में अभी स्ट्रेंथ बाकी है.
राइट, सो यू आर टॉकिंग ऑफ एवरेजिंग आउट, हम अपने टाइम को भी एवरेज आउट करते हैं.
हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, गौरा के कुछ सवाल हैं, लेकिन उनके पहले ये भी साथ में बता दें कि विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर की कीमत, एक डॉलर की कीमत जो रही है वो 82.86 रूपये रही है. डॉलर इंडेक्स थोड़ी बढ़त के साथ अंतर दिवसीय कारोबार के समय 102.97 पर रहा है. यस गौरा, यू आर
राइट, थैंक यू आज Kumar, you know, we have been saying that retail investors have actually really strengthened the market against global fluctuations. The Indian market is coming into its own. The segment has really moved up. We want to understand from you that there takes a time for the retail investment and investors to mature, because sometimes a simple messaging, which may not even have repercussions at that moment, can trigger the market so much. So do you feel that retail investment in our market still has to mature? It's too new?
It's too new. It's in any market, not only in Indian market, in any market, retail investment is still sitting. It is still getting the strength. And even whatever be there, it depends, it's a relative word. You can't simply say in absolute term relative to retail, because the market driver, how much is the qualified institutionals are there, how much foreign portfolio investors are there, that quantum is also deciding whether your retail investors are in a substantially, you know, capable or not. But in Indian market, they are day by day getting mature, and that's why we look into that domestic strength is also further, you know, strengthening. Domestic market is getting fundamentally strong just because of this reason, because retail investors are also in large number, they're holding the market.
And the more they hold, the more they practice and participate in the market, the stronger they'll become in their convictions.
Yes. One indicator if I want to highlight here is that number of times in the past, in the recent past, you'll find out that whenever there is a big index has already gone into any kind of a fall, the mid-size and a small-size indices has gone up.
Okay.
Because it is something like a reallocation of fund and in a different asset class. And that is what a smart way. It's a kind of there is a conceptual theory called habitat theory. It's a not habitat theory is continuing. It is a cross-section investment is also going into it.
Yeah, habitat theory ke hai, thoda sa brief mein bata.
Habitat theory ki agar koi investor ek particular asset class mein invest kar raha hai, तो अगर दूसरे एसेट क्लास में अगर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उधर न देखे अपने ही इन्वेस्टमेंट क्लास को देखेगा। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में लगे तो आप स्टॉक मार्केट में ही रहेंगे, शेयर मार्केट में ही रहेंगे, आप बॉन्ड मार्केट में नहीं जाएंगे, या आप रियल एस्टेट में नहीं जाएंगे, आप ऑयल मार्केट में नहीं जाएंगे, आप करेंसी में नहीं जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि देखा जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर मीन्स एक ट्रू सेंस में पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो तैयार हो,
डाइवर्सिफिकेशन
क्रॉस बॉर्डर भी हो।
लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर जो कि रिटायर्ड पर्सन होते हैं, उनके पास अगर मान लीजिए 100 रुपया है और वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सेफ के लिए क्योंकि उनके पास पेंशन नहीं है, तो आपकी सलाह क्या होगी कि वो कितना बिल्कुल फिक्स्ड इनकम में डालें बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, और कितना म्यूचुअल फंड के माध्यम से मार्केट में एक्सपोज ले?
मार्केट में जैसे अगर रिटायर्ड पर्सन है तो उनको अगर किसी तरह की लायबिलिटी अगर नहीं है उनके पास, तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में पिरामिडल इन्वेस्टमेंट रहता है। तो पिरामिडल इन्वेस्टमेंट में एक चीज रिटायर्ड पर्सन के लिए है कि उनका रेगुलर इनकम का जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो ज्यादा होना चाहिए, और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉम्पेरेटिवली वो मिनिमाइज कर सकते हैं अगर उनको रेगुलर इनकम की जरूरत है
जी।
और अगर उनको रेगुलर इनकम की उतनी जरूरत नहीं है, हाई एंड अच्छी क्वालिटी पेंशन मिल रहा है, लाइफ लॉन्ग पेंशन की स्थिति है, तो उस केस में वो अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपरली बैलेंस करते हुए इनकम एंड ग्रोथ दोनों को ले सकते हैं। ग्रोथ कुड बी गिफ्टेड टू ग्रैंडचिल्ड्रन।
लेकिन अगर इनकम की डिपेंडेंसी इसी पैसे पे है तो
फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड इनकम
70-30 का रेशियो
दैट कुड बी बेटर, और इवन 80-20 कुड बी देयर।
ओके नाइस। तो अब बात कर लेते हैं कि बाकी दुनिया के शेयर बाजारों का क्या हाल रहा। पहले बात करेंगे एशियाई बाजारों की, जहां आज मिला जुला रुख रहा है। सिंगापुर बाजार का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.6% बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरियाई बाजार के कॉस्पी में 0.4% की तेजी रही है। जापान के निकेई सूचकांक में हालांकि 0.25% की गिरावट रही। हांगकांग बाजार भी 0.1% गिरा है। यूरोपीय बाजारों में अभी कारोबार चल रहा है, इंट्राडे में तेजी देखी जा रही है। फ्रांस का कैक 40 0.5% की तेजी पर कारोबार कर रहा है, जबकि जर्मनी के डैक्स में भी 0.15% की तेजी बनी हुई है। लंदन का फुटसी 100 भी मामूली तेजी पर भी है। और अमरीकी बाजारों का क्या हाल है ये गौरव से देख लेते हैं।
US stocks ended sharply higher yesterday with the S&P 500 registering a record high close as consumer price data failed to dampen investors' hopes of interest rate cuts in the coming months. The S&P 500 soared 1.1%, while the Nasdaq composite rose 1.5%. The Dow Jones Industrial Average jumped 0.6%. Kumar, US inflation, the figures came out yesterday or the day before, and well, higher than expected, than what they had thought of. What really is happening? And of course, the market seems to have responded differently today.
Yeah.
But what seems to be the reason why they're not managing to really predict the direction of inflation?
No, inflation is as per their expectation, but they wanted to control the inflation. What where they are failing is, actually that inflation, the way we have started targeting the inflation, the similar kind of situation has been always there by Fed. But Fed had been with this hope that inflation will be under control, and the moment inflation will be under control, they will prefer to cut the rate to stabilize the market. But now, what is happening that kind of a rate cut is not expected immediately. So it is one of the negative signals for rest of the world, especially country emerging economies like India. And that high rate is actually going to give better yield there. And when there is a better yield, always a chances of flight of the capital from our market to that market.
Okay.
There will be real interest rate differential is going to be there. We should not be as per parity theorem. That is what very important.
Right.
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं गुजरात के धोलेरा, सानंद और असम के मोरीगांव में स्थित हैं। इस कदम से भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में मदद मिलेगी। भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का नेतृत्व करने में सक्षम बनाने के लिए एंड टू एंड सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ने इंडिया टेकेड में भी हिस्सा लिया और युवाओं को संबोधित किया। इस पहल से देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों IITs, NIT, IIM, IISER, IISC और अन्य शीर्ष संस्थानों के 1814 छात्रों ने और संस्थानों ने भाग लिया। इतने सारे सेमीकंडक्टर पे एक जो भारत सरकार की पहल है, ये एक बहुत बड़ी पहल है। इस पे कुमार हम आपसे बात करना चाहेंगे विस्तार से थोड़ी। भारत सेमीकंडक्टर के मामले में अब आत्मनिर्भर हो जाएगा और सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह इस्तेमाल हो रही है। हर हाथ में मोबाइल है, बिना सेमीकंडक्टर के मोबाइल नहीं चल सकता, आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, वॉशिंग मशीन घर पर नहीं चल सकता। जो भी चीज हम आज के तारीख में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर
यूज कर रहे हैं, सब में यूज होने
जा रहा है। और इस पर हमारी डिपेंडेंसी अब तक चीन और ताइवान पर थी, क्योंकि ये दो देश बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर बनाते थे और हमने देखा कि इसकी वजह से गाड़ियों की ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिलीवरी में भी काफी देर हो रही थी, बहुत हमने सफर भी किया है। अब प्रधानमंत्री की इस पहल से न सिर्फ भारत आत्मनिर्भर होगा बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, एक बड़ा इकोसिस्टम बनेगा और जो हमारी योजना है विकसित राष्ट्र होने की, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होने की, उसमें कितने बड़े पैमाने पर ये सहयोग करेगा सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता।
देखिए, जब आप कभी भी किसी भी तरीके से अगर आत्मनिर्भर या विकसित भारत की बात अगर करते हैं, तो विकसित भारत का मतलब हो जाता है कि आप आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। और आत्मनिर्भर होने के लिए जब आप मेन प्रोडक्ट, जो मुख्य प्रोडक्ट है, उसको अगर आप यूज कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो सिर्फ उस प्रोडक्ट का नहीं बल्कि उस प्रोडक्ट के सारे कॉम्पोनेंट्स जितने भी हैं, जो सप्लाई चेन पूरा का पूरा है, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और यहाँ जियो पॉलिटिकली भी देखना है कि अगर आपकी डिपेंडेंसी, आप अगर किसी वैसे देश पर निर्भर हैं जिस देश के साथ आपके मधुर संबंध ना हो, चाहे वो उस देश के साथ आप सीमा साझा कर रहे हों, अगर मधुर संबंध नहीं है तो किसी भी समय वो एक समस्या खड़ा कर सकती है। और इसलिए जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर हो उस प्रोडक्शन में, और ये एक बहुत अच्छी पहल है इसके साथ।
राइट, we move on with our stories. The government today approved 2 corridors of the Delhi Metro Phase 4. Briefing the media in New Delhi after the cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur said the total project cost of the 2 corridors will be 8,400 crore rupees. He said the Lajpat Nagar Saket G Block Metro line will be 8.3 kilometers long and will have 8 stations and will also connect the silver, magenta, pink and violet lines. Mr. Thakur said the 12-kilometer-long Inderloop to Indraprastha metro line of the Delhi Metro will be an extension of the Green Line. He said it will have 10 stations and will provide interchanging facilities with the red, yellow, magenta, violet, blue and airport express lines. The Cabinet also gave its approval to the signing of a Memorandum of Understanding, MOU, between the Government of India and the Royal Government of Bhutan on the general supply of petroleum, oil, lubricants and related products from India to Bhutan. The Cabinet also approved the signing of an MOU between India and Bhutan on extending cooperation in the field of energy efficiency and energy conservation measures. The Cabinet also approved the signing of an agreement between the Bhutan Food and Drug Authority, BFDA, the Ministry of Health, the Royal Government of Bhutan, and the Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, regarding cooperation in the areas of food safety. The signing of this agreement between the BFDA and FSSAI will facilitate trade between two neighboring countries. Before we move on to questions, we have another heavy industry-related story. Heavy Industry Minister Mahendranath Pandey today launched the Electric Mobility Promotion Scheme, EMPS 2024, in New Delhi. Under this four-month special scheme, the government has allocated 500 crore rupees to support the two- and three-wheeler segment of vehicle purchases. Talking to the media, Mr. Pandey said that this incentive scheme will promote the goal of net zero carbon emission and e-mobility. At the sidelines of this function, an MOU was also signed between the Ministry of Heavy Industry and the Indian Institute of Roorkee for the enhancement of competitiveness in the Indian capital goods sector and the establishment of a centre of excellence. This MOU will work towards automotive and allied research and technology innovation. The Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, also joined the function through a virtual medium. Kumar, let's talk about the heavy industry story that we just read out. And today when we talk of, you know, the two-wheeler and the three-wheeler segment, linking that with eco-fuel or e-mobility, a sunrise industry for the country. And also I think if you want India on the move, of course the four-wheeler segment is growing. But it's the two-wheeler segment which is actually going to, you know, on which India is going to ride on.
Very correct. That is what is there. See, both of your news, even Metro News, that is there. That is also very important for contributing the growing India. Actually, when India is going to have a high trajectory growth, it is essentially required that transportation facilities should be better for the common mass, because middle mass group, middle income group is really, you know, becoming larger and larger. And whatever the, whenever we say that a good number of people, like 13.5 crore people, had been uplifted from BPL and they are moving up. So there, purchasing power is increasing, and when that purchasing power is increasing, certainly the mobility and the self-financed vehicle, especially the larger segment of the population, is going to be in the two-wheeler segment. Immediately, first vehicle for, you know, going is to be two-wheeler in that. And then in that case, if you have to balance between your environmental conditions like pollution, you have to balance because you have to have the fossil fuels maximum imported, 80% closer to 80% of fuel consumption is imported. And third important aspect is that we are importing from the country. Again, there is no certainty related to geopolitical relationships. Keeping these all things in mind, it is only that when your this electromotive, you know, vehicle, that it's not only a policy, it has to be a mission mode, it has to be a movement, and then only transformation will be possible. And we are expecting that by 2031, even green hydrogen will start playing the role even in all these vehicles. So certainly this is a great move, and it is going to be with this all road is leading ultimately to have that Viksit Bharat.
Right.
बिल्कुल. और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में कोयला क्षेत्र के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जारी किया. इस योजना का उद्देश्य पीएम गतिशक्ति के केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से कोयला क्षेत्र में गहन जानकारी प्रदान करना है. इस मौके पर श्री जोशी ने कहा कि यह पहल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव है. कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि पीएम गतिशक्ति कोयला क्षेत्र की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सभी हितधारकों को सशक्त बनाएगा. उन्होंने कहा कि ये पहल आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के बिल्कुल अनुरूप है. और हम देख रहे हैं कि ये जो पीएम गतिशक्ति की जब से शुरुआत हुई है, तमाम मंत्रालयों के बीच आपसी सहयोग इस कदर बढ़ा है कि जो काम का पेस है और उनके इम्प्लीमेंटेशन का पेस है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ा, बहुत त्वरित टिप्पणी, समय कम।
इसमें सिर्फ यही है कि हम लोग अगर भारत अगर पिछड़ रहा है तो अपने कॉस्ट हाई होने के कारण, और कॉस्ट का सबसे बड़ा लीकेज ज्यादा टाइम लगना। अगर टाइम को बचा लिया जाए, अगर उसके ट्रांसपोर्टेशन को बचाया जाए, उसके फेज को बचाया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर हाल में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अचीव करेंगे।
बिल्कुल।
A look at the crude prices. Crude oil futures rose today, buoyed by the possibility of supply disruptions following Ukrainian attacks on Russian refineries. Additionally, robust demand indicators and optimism surrounding potential interest rate cuts by the Federal Reserve, despite persistent U.S. inflation, contributed to the market's positive sentiment. In intraday trade, Brent crude was trading at $82.98 per barrel, while Texas intermediate crude price was at $78.66.
तेल के बाद सोने चांदी की कीमतों पर भी नजर डाल लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने की कीमतें तेजी पर थीं। 119 रुपए की बढ़त के साथ सोना 65,600 रुपए पर कारोबार कर रहा था। मई कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी की कीमतों में भी 273 रुपए की तेजी थी और ये 74,123 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना मामूली मजबूती के साथ प्रति औंस $2,168 पर था, जबकि चांदी की कीमत प्रति औंस $24.52 थी। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब वक्त कह रहा है कि कार्यक्रम समाप्त किया जाए। कुमार विजय, आप हमसे जुड़े और हमने आपके साथ बातचीत की तमाम अर्थशास्त्र के मुद्दों पर, इकोनॉमी से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित। आपका स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच कुमार विजय फॉर कमिंग ऑन टू अवर प्रोग्राम। इट वॉज वंडरफुल दिस कन्वर्सेशन विद यू। एंड नाउ लिसनर्स, अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस। Benchmark indices end lower, Sensex tanks over 900 points to slip below 73,000 mark amid broad-based sell-off. Small cap index plunges 5.1%. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone of 3 semiconductor projects, says India is set to become global hub in semiconductor manufacturing. And Union Cabinet approves 2 corridors of Delhi Metro Phase 4 projects. And that's it in today's program. Namaskar.
Namaskar.
Market Maker.